कुल कह दीजिए, सीरू चलो फिरो, फिल अर्दे जमीन में, तुम मंजुरू फिर देखो, कैफा किस तरह, काना हुआ, आकिबतु अंजाम, अल्मुकद्दिमीन झुटलाने वालों का। कुल कह दीजिए, लिमन वास्ते किसके है, मा जो, फिस समावाती आसमानों में है, वल अर्द और जमीन में। कुल लिल्लाह कह दीजिए, अल्लाह के लिए, कतबा उसने लिख दिया, अला नफ्सिही अपनी जात पर, अर्रहमा रहमत को, लयजमअन्नकुम अलबत्ता वो जरूर जमा करेगा तुमको, इला यौमिल कियामति कयामत के दिन में, ला रईब फी जिसमें कोई शक नहीं, अल्लज़ीना वो लोग, खसिरू जिन्होंने नुकसान में डाला, अन्फुसहुम अपने नफ्सों को, फहुम तो वो, ला युमिनून ईमान नहीं लाते, वलहू और उसी के लिए है, मा सकना जो ठहरा हुआ है, फिल लैली रात में, वन्नहार और दिन में, वहुआ और वो, अस्समीय सुनने वाला है, अलालीम जानने वाला है। कुल कह दीजिए, अगैर अल्लाही क्या अल्लाह के सिवा, अत्तखिजु मैं बना लूं, वलियन कोई दोस्त, कोई सरपरस्त, फातिर समावाती जो पैदा करने वाला है आसमानों का, वल अर्दी और जमीन का, वहुआ और वो, युतइमु खिलाता है, वला युतअम और नहीं खिलाया जाता। कुल कह दीजिए, इन्नी बेशक मैं, उमिर तो मुझे हुक्म दिया गया है, अन अकूना कि मैं हो जाऊं, अव्वला पहला, मन अस्लमा जो इस्लाम लाया, वला तकूनन्ना और न तुम हो जाओ, मिनल मुशरिकीन शिर्क करने वालों में से। कुल कह दीजिए, इन्नी बेशक मैं, अखाफू मैं डरता हूं, इन असई तो अगर मैंने नाफरमानी की, रब्बी अपने रब की, अजाब यौमिन अजाब से एक दिन के, अजीमिन बड़े यानी बड़े दिन के अजाब से, मन जिससे, युसरफ अनहु फेर लिया गया उससे, यौम इजिन उस दिन, फकद तो तहकीक, रहमहु उसने रहम किया उस पर, वजालिका और यही, अल्फौजु कामयाबी है, अल्मुबीन खुली खुली, व इन और अगर, यमसस्कल्लाहु पहुंचाए तुझको अल्लाह, बिदुर्रिन कोई नुकसान, फला तो नहीं काशिफा कोई खोलने वाला, लहू उसके लिए, इल्लाहु मगर वो खुद ही, व इन और अगर, यमसस का पहुंचाए तुझको, बिखैरिन कोई भलाई, फहुआ तो वो, अला कुल्ल शैइन हर चीज पर, कदीर कादिर है, वहुआ और वो, अल्काहिरु गालिब आने वाला है या गालिब होने वाला है, फौका ऊपर, इबादिही अपने बंदों के, वहुआ और वो, अल्हकीमुल खबीर हिकमत वाला है खबर वाला है। कुल कह दीजिए, अय्यु शैइन कौन सी चीज, अकबरु ज्यादा बड़ी है, शहादतन गवाही में, कुलिल्लाह कह दीजिए अल्लाह, शहीदुन गवाह है, बैनी मेरे दरमियान, व बैनकुम और तुम्हारे दरमियान, व ऊहिया और वही किया गया, इलैया मेरी तरफ, हाज़ल कुरआनु ये कुरआन, लिउन्ज़िरकुम ताकि मैं खबरदार करूं तुमको, बिही साथ इसके, वमन और जिसको, बलगा पहुंचे यानी ये कुरान, वो भी यही कुछ करे, अइन्नकुम क्या तहकीक तुम, लतशहदूना अलबत्ता तुम गवाही देते हो, अन्ना कि बेशक, मा अल्लाही अल्लाह के साथ, आलिहतन कुछ इलाह हैं, उखरा दूसरे, कुल कह दीजिए, ला अशहद मैं गवाही नहीं देता, कुल कह दीजिए, इन्नमा बेशक, हुवा वो, इलाहुन इलाह है, वाहिदुन एक, व इन्ननी और बेशक मैं, बरी उन बरी जिम्मा हूँ, मिम्मा उससे जो, तुशरिकून तुम शरीक ठहराते हो, अल्लज़ीना वो लोग, आतैनाहुमुल किताबा दी हमने उनको किताब, यारिफूनहु वो पहचानते हैं उसको, कमा जैसा के, यारिफूना पहचानते हैं, अबनाअहुम अपने बेटों को, अल्लज़ीना वो लोग, खसिरू जिन्होंने खसारे में डाला, अनफुसहुम अपने नफ्सों को, फहुम तो वो, ला युमिनून ईमान नहीं लाते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अल अनाम के बारे में एक और रिवायत भी आती है। हजरत अनस रिवायत करते हैं कि सूरत अनाम के नुजूल पर इसके साथ फरिश्तों का एक गिरोह अजीम नाजिल हुआ जिससे मशरक और मगरब का उफक भर गया। उनकी तस्बीह की आवाज में एक जबरदस्त गूंज थी, सुभान अल्लाह अल अजीम, सुभान अल्लाह अल अजीम। इस सूरत में खास तौर पर अल्लाह सुभान व तआला की तौहीद के दलायल मौजूद हैं। شرک سے برات کی باتیں بھی ہیں۔ شاید اسی وجہ سے فرشتے خصوصی طور پر سبحان اللہ العظیم پڑھ رہے تھے۔ ابتدا ہوتی ہے الحمدللہ سے، الحمدللہ الذی، سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ الذی، وہ ذات، خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ تعریف اس کی جس نے سب کچھ بنایا۔ وجعل الظلمات والنور، اور اندھیرے بھی بنائے اور روشنی بھی۔ اندھیرے کے ایک سمپل معنی تو رات ہے، کہ رات بھی بنائی، والنور، اور دن بھی بنایا۔ لیکن اندھیرے کو اگر ایک سمبل کے طور پر لیا جائے تو یہاں اندھیروں سے مراد کفر، شرک، بدعت، گمراہی کے اندھیرے ہیں۔ گمراہی کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں، اور ساری کی ساری اندھیرے ہیں۔ کل بدعت ضلالہ، کل بدعت دلالہ، کل دلالت فی النار، ہر گمراہی کا ٹھکانہ آگ ہے۔ والنور، اور روشنی، روشنی سے مراد ایمان، اسلام ہے، حق کا راستہ ہے جو صرف ایک ہی ہے۔ ثم الذین کفروا، پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بربہم، اپنے رب کے ساتھ، یعدلون، دوسروں کو برابر کر لیتے ہیں، برابر ٹھہرا دیتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی ذکر کیا گیا کہ یہ سورت مکی ہے، مخاطب بھی مکہ والے ہیں پہلے درجے میں، اس کے بعد یہ پیغام ساری دنیا کے لیے ہے۔ مکہ والے اس بات کو مانتے تھے کہ زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے، ان کے ہاں اللہ سبحان و تعالی کی ذات کا تصور موجود تھا۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ رات اور دن اللہ کے حکم سے بدلتے ہیں۔ ان میں سے کسی کا بھی یہ عقیدہ نہ تھا کہ یہ کام لات، حبل یا منات میں سے کوئی کرتا ہے۔ اسی لیے ان کو خطاب کر کے فرمایا گیا کہ جب تم یہ مانتے ہو کہ زمین و آسمان کا خالق، گردش لیل و نہار کا کرنے والا اللہ ہے، تو یہ دوسرے کون ہیں جن کے سامنے سجدے بجا لاتے ہو، نظریں اور نیازیں چڑھاتے ہو، دعائیں مانگتے ہو اور اپنی حاجتیں پیش کرتے ہو؟ ایک عجیب قسم کی دو طرفہ رویے میں یہ لوگ مبتلا تھے۔ اللہ کو مانتے بھی تھے، پھر اس کی صفات میں، اس کے اختیارات میں دوسروں کو شریک مانتے تھے۔ آج ہم مسلمانوں کے اندر بھی ایسے لوگ بالفعل موجود ہیں جو یہی کچھ کر رہے ہیں۔ مثلا آج صبح ہی مجھے پتا چلا، الوداع کے جو اسٹوڈینٹس مختلف جگہوں پہ پڑھ لیتے ہیں تو بعد میں وہ اپنی اپنی سہولت کے مطابق مختلف علاقوں میں جا کر اس علم کو آگے پہنچاتے ہیں۔ وہ ہر ایک کی سہولت یا جذبے یا ضرورت کے مطابق وہ خود بھی ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اگر وہ ہم پہ چھوڑیں تو ہم بھی ان کے لیے ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں۔ تو ہم نے ایک کام شروع کیا ہے، کچی بستیوں اور ایسے علاقوں میں جا کر تبلیغ کرنے کا کہ جہاں عام طور پر بہت زیادہ جہالت ہے۔ مثلا لاہور میں پچھلے سال کی فارغ شدہ اسٹوڈینٹس कई गांवों में जा रही हूँ और इंशाल्लाह जल्द ही पूरी रिपोर्ट आएगी, किस वक्त मैं आपको सुनाऊंगी। बहुत इंटरेस्टिंग है कि उनके एक्सपीरियंस वहाँ क्या क्या हो रहे हैं, लोगों की जहालत का हाल क्या है और उनकी इसलाह किस तरह की जा रही, क्योंकि सबसे ज्यादा जो गुमराही फैली हुई है वो शिर्क ही की है, अकीदा ही दुरुस्त नहीं, क्योंकि अकीदा बुनियाद है ना, जड़ है। अगर अकीदा दुरुस्त हो जाए तो इबादात खुद ब खुद आ जाए, मामलात और अखलाक खुद संवर जाए, लेकिन जब बुनियाद में खराबी होती है, कहते हैं ना कि अगर किसी इमारत की बुनियाद टेढ़ी हो जाए तो वो इमारत खास सुरैया तक आप ले जाए वो टेढ़ी ही बनेगी, फिर सब काम बिगड़ जाते हैं जब अकीदा ठीक नहीं होता। इसी तरह फैसलाबाद में भी दो तीन जगहों पर खवातीन जा रही हैं और काम शुरू किया है। तो आज ही सुबह मुझे किसी ने बताया कि वो, ये उनका अपना जाती तजुर्बा था, वो कहती हैं कि मैं एक बस्ती में गई और वहां मैंने कुछ लोगों से कलमा सुना और लिटरली कलमा नहीं आता था। कहती हैं मैं काफी देर कहलवाने की भी कोशिश की लेकिन अफसोस के जो बात कभी जबान से निकाली ना हो वो निकालने में कितनी मुश्किल होती। तो कहती है कि उसके बाद मैंने उससे पूछा कि तुम नमाज पढ़ती हो या और कोई बात, कहती किसी बात की कुछ खबर नहीं। तो कहती मैंने पूछा फिर आखिरत में निजात का क्या सोच रखा है, अल्लाह का जवाब नहीं देना? कहते नहीं, वो पीर साहब देंगे, वो हमें बचाएंगे। इन्होंने पूछा तुम्हारा पीर कौन सा है? कहने लगी अभी नहीं पकड़ा क्योंकि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, जब मेरे पास पैसे आएंगे तो फिर मैं पीर साहब को पेश करके उनसे एक ताल्लुक बांधूंगी, या मालूम नहीं जो बैत होती है या कुछ भी उसका नाम कह लें आप। तो ये एक मिसाल है, ऐसी कई मिसालें हो सकती हैं। फिर मुझे पता चला कि रिसेंटली अभी इसी हफ्ते में वहां एक जगह पर एक बस्ती में बहुत बड़ा एक शबीना हुआ, सारी रात उसमें तरह तरह के काम किए गए और जो लोग वो पढ़ रहे थे नाते वगैरह या और चीजें, उन पर लोगों ने बकायदा पैसों की बारिश की और कहते कि इस तरह नोट उछाले गए, कहते कि आसपास सिर्फ पैसे ही पैसे नजर आ रहे थे। कहते हैं कि इस किस्म का कारोबार जो है वो जगह जगह शुरू हो चुका है कि जो बातें बताई जाती हैं वो यही कि ये जो बुजुर्ग हैं तुम्हारे, ये तुम्हें अल्लाह से छुड़ा लेंगे, अल्लाह से बचा लेंगे। अरबों के यहां भी ऐसा ही अकीदा था, वो अल्लाह को मानते थे, ये भी मानते थे कि ये सब काम उसके हुक्म से हो रहे हैं, लेकिन अपनी निजात के लिए उन्होंने बद अमली के साथ इस किस्म के सस्ते नुस्खे या अकीदे ढूंढ रखे हैं कि काम कुछ ना करना पड़े, ना कलमा सही पढ़ने की जरूरत है, ना नमाज पढ़ने की जरूरत है, ना कुछ और करने की, बस किसी अल्लाह वाले का हाथ पकड़ लो और वो तुमको पार करा देगा, जन्नत में पहुंचा देगा। फिर एक और डॉक्टर मिली जो खुद ऐसी बस्तियों में जाके वेलफेयर का काम भी कर रही हैं और साथ तबलीग भी कर रही हैं। उन्होंने भी एक कैसेट प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है जो जहां जहां जाती हैं वहां कैसेट क्लास का भी एहतमाम कर रही हैं, कुछ हमारे एक्स स्टूडेंट्स को भी साथ लेके जा रही हैं। तो उन्होंने बताया कि मेरे पास एक पेशेंट आती थी, नौजवान सी, तो एक दिन वो आई तो उसके जिस्म पे बहुत नील पड़े हुए थे, तो मैंने कहा कि क्या हुआ? कहते हैं कि वो फलां बुजुर्ग ने बहुत मारा है कि जिन निकाल रहा था वो, कहते कि नीलो नील थी वो लड़की। तो मैंने उसे कहा कि तुम्हारा ये और ये मसला है, ये बीमारी है तुमको, तुम्हें कोई जिन नहीं, इसके लिए तुम्हें दवा खानी पड़ेगी। लेकिन कहती कि उसको कोई समझ ना आई। कहती फिर कुछ अरसे बाद उसकी और रिश्तेदार दवा लेने के लिए आई, तो मैंने पूछा वो लड़की नहीं आई? तो कहते हैं कि वो मर गई है। मरी कैसे है? उसके जिन निकाल रहे थे तो मार मार के मर गई वो। अब आप अंदाजा लगाएं जहालत का कि मुख्तलिफ बीमारियों को जिन चमटने का नाम देकर और फिर जिन भी छुड़ाए जा रहे हैं इस तरह मार मार कर, تو یہ کہاں کا دین ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات نکالنے کا یہی نسخہ استعمال کیا تھا؟ یہ کہیں سنت سے یہ ثابت ہے کہ مار مار کے مار ڈالو لوگوں کو؟ اور یہ بھی ان کا فرسٹ ہینڈ ذاتی ایکسپیرینس تھا، کسی اور کی سنی سنائی بات نہیں. اور ایسے بے شمار واقعات آپ نے بھی سن رکھے ہوں گے. تو اتنا دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ہی ملک میں بسنے والے آج بھی حقیقتاً دور جاہلیت کی زندگی گزار رہے ہیں. دور جاہلیت. بلوچستان میں ایک جگہ کہتے ہیں کہ نماز استسقاء ہوئی، بارش نہیں ہو رہی تو نماز پڑھی گئی، بہت لوگ جمع ہوئے، کہتے ہیں بڑی دعا مانگی گئی. اس کے بعد مولوی صاحب نے کہا، اب ایک گھڑی نکال کے دکھائی اور کہا یہ گھڑی ہے، جس کی ہے وہ لینے کے لیے آ جائیں. کہتے ہیں 30-35 لوگ آ گئے. انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح تو فیصلہ نہیں ہوگا، تم قرآن پہ ہاتھ رکھو. کہتے ہیں کہ باقی لوگ تو ڈر گئے، 3-4 لوگوں نے قرآن پر بھی ہاتھ رکھ دیا. تو مولوی صاحب نے کہا یہ گھڑی میری اپنی ہے، میں تم لوگوں کو صرف ٹیسٹ کر رہا تھا کہ تمہارا ایمان کتنا ہے، تاکہ میں تم کو یہ بتاؤں کہ اللہ اپنی رحمت کیوں نہیں ہم پہ کر رہا، کہ یہ ہمارے اعمال ہیں کہ نماز پڑھ کر مصلے پہ جھوٹ بولتے ہیں اور قرآن پہ بھی ہاتھ رکھ کے قسم کھانے کو تیار ہو جاتے ہیں. یہ سب کچھ کیوں ہے؟ اس لیے کہ شعور اور ضمیر مردہ ہو چکا ہے. لوگوں نے اپنی نجات کا سستا طریقہ ڈھونڈ رکھا ہے کہ چوری کرو، جھوٹ بولو، قسم کھاؤ، جو چاہو کرو، نجات ہو جائے گی، بس کسی کا دامن تھام لو. اور یہ ہمارے عوام میں کثرت سے موجود ہے. پھر لاہور میں ایک واقعہ پتا چلا کہ کسی کی گاڑی چوری ہو گئی، تو کسی نے ان کو بتایا کہ جو بتا رہی تھی واقعہ، ان کے قریبی رشتہ دار کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. گاڑی چوری ہوئی اور کسی نے بتایا کہ پشاور میں فلاں جگہ پر جاؤ، فلاں شخص سے ملو تو گاڑی مل جائے گی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ وہاں پہنچے، جب اس ٹھکانے پہ پہنچے تو پوچھا کہ فلاں شخص کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ مسجد گئے ہوئے ہیں. وہ انتظار کرنے لگے، کہتے ہیں کہ وہ مسجد سے واپس آئے، ان کی اتنی بڑی داڑھی بھی تھی، اور انہوں نے ان سے کہا کہ اس طرح میری گاڑی کھو گئی ہے تو میری مدد کریں. انہوں نے کہا 3 لاکھ روپے لے آئیں، گاڑی مل جائے گی. ان کا کہ 3 لاکھ کس لیے؟ گاڑی میری ہے اور 3 لاکھ دے کے؟ ان کا ہاں 15-16 لاکھ کی گاڑی ہے، 3 دو گے تو مل جائے گی. نہیں دیتے تو نہ سے. انہوں نے انہیں خدا کا واسطہ دیا کہ دیکھو آپ تو نماز پڑھنے گئے ہوئے تھے. وہ کہنے لگے نماز اپنی جگہ، کاروبار اپنی جگہ، نماز اپنی جگہ، کاروبار اپنی جگہ. یہ ہمارا کاروبار ہے. اگر آپ کو چاہیے گاڑی تو آپ پیسے لے آئیں، اگر نہیں تو آپ جائیں. جس ملک میں ظلم کا یہ عالم ہو اور نمازیں پڑھنے والوں کا یہ حال ہو، اور جو دین اور دنیا کو اس طرح الگ کیے ہوئے ہوں، کبھی سوچا آپ نے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ عقیدے کی خرابی، کہ ادھر سے 3 لاکھ لیں گے، اس میں سے جا کے کچھ کہیں مسجد میں فنڈ ڈال دیں گے یا کہیں اور صدقہ خیرات کر دیں گے اور ہماری نجات ہو جائے گی، یا کسی ایسے ہی پیر کو جو نقلی ہیں، جو اصل میں اللہ کے بندے ہیں، وہ یہ نہیں کرتے. مت آپ میری بات سے یہ سمجھے کہ سارے ہی ایسے ہوتے، سب نہیں ایسے ہوتے، لیکن اکثریت کا حال یہ ہو چکا ہے کہ وہ اس طرح کے نذرانے قبول کر کے لوگوں کو کیا وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تم کو چھڑا لیں گے، ہم تمہیں بچا لیں گے. زبان سے کہتے ہیں یا عمل سے کہتے ہیں یا ان کے چیلے چوانٹے لوگوں میں یہ باتیں مشہور کرتے رہتے ہیں. یہ چیز، اس کی بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہی ہے، عقیدے کی خرابی. یہ جو اپنے رب کے ساتھ اہل مکہ شرک کرتے تھے، इनसे जब पूछा जाता था ये क्यों करते हो तुम, इन लात और उज्जा और मनात पे चढ़ावे क्यों चढ़ाते हो, ये नजराने क्यों देते हो, तो वो यही कहते थे कि हाउलाए शुफाउना इंदल्ला, ये सब अल्लाह के हाँ हमारे सफारशी हैं। हमें कोई काम पड़ता है हम इनको राजी करते हैं, ये अल्लाह को मना लेते हैं। और इसी तरह एक और जगह पर आता है कि कहते हैं कि मा नअबुदुहुम इल्ला लियुकर्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फा, हम इनकी इबादत नहीं कर रहे मगर इसलिए कि ये हमें अल्लाह के करीब करते हैं, इनको हमने वसीला बनाया हुआ है अल्लाह तक पहुंचने का। अब ऐसे इलाकों में तबलीग की कैसे जाए जिन लोगों के इतने पक्के अकीदे हों इन चीजों पर बैठे हुए। तो उसमें एक खातून जो कर रही हैं वो ये कि उन्होंने गांव की औरतों को जमा किया और उन्हें कहा कि मैं तुमको कुरान पढ़ाती हूँ। कहने लगे आप कौन सा कुरान लाएं, उनका कि जो तुम्हारे घर है ना कहीं तुम्हारे गांव में कोई वो उठा लो, मेरे कुरान को रहने दो तो अपना कुरान ले आओ। उनका कुरान मंगवाया और कहती है कि वो आयात मार्क करके ले गई थी जहां ये चीजें आती हैं कि अल्लाह के सिवा कोई मुश्किल आसान नहीं कर सकता। मसलन अभी यहाँ आयत मैंने तर्जुमा की है, अगर आपने नोटिस की हो आयत नंबर है 17, وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ। वो कहती है कि हमने इस तरह की वो सारी आयात की हमें लिस्ट अब भेजेंगी कि जो जो वो कोट करनी है, क्योंकि हम उस बच्ची पढ़ी लिखी थी उन्हीं का कुरान पाक मंगवाया, उन्हीं की बच्ची बिठाई और उसे कहा इन आयतों का तर्जुमा पढ़ो और बार बार पढ़वाया। कहते हैं एक खातून ने जिसने एतराज किया, उन्होंने कहा आप सच कहती बिल्कुल ठीक लिखा हुआ, हमारा इल्म गलत था। और कहते हैं कि इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह और बहुत आसानी से लोगों ने मान लिया। कहते हैं कि बाज़ात ऐसा होता है कि गांव में जाते हैं तो गांव के जो मस्जिद या मौलवी साहब होते हैं या जो कुछ लोग होते हैं कि जो कहते हैं कि ये हमें कोई दीन पढ़ाने आई, तो पहले बात करते हैं कि देखो हमारा अकीदा ना खराब करना, ये जुमला बोलते हैं कि हमारा अकीदा नहीं खराब करना। उनके नजदीक तौहीद की दावत अकीदा खराब करना है। तो इन्होंने कहा हम अपने पास से कुछ नहीं बताएंगे, हम सिर्फ कुरान से बताएंगे, आप बेशक खुद पढ़ें, आप खुद हमें बताएं कि क्या माना है। अब आप देखें कि मेरी तेरी बात तो कोई नहीं सुनेगा मगर कुरान के आगे कोई ना कर सकता है, आखिर उसको सोचना पड़ेगा। तो इस तरह बगैर लड़े झगड़े, बगैर किसी को कोई कुछ सताए, और अगर रवैया ये हो कि आपने किसी को लेट डाउन नहीं करना, दरअसल उसकी भलाई चाहनी है, उसकी खैर चाहनी है, तो अल्लाह ताला भी रास्ते खोलते हैं। ये दो तीन चीजें मैंने तमहीद में ही इसलिए बता दी कि सूरत अलानाम में शिर्क की तरदीद है और हमारे माशरे की सबसे बुनियादी खराबी शिर्क है। अनपढ़ अपनी किस्म का शिर्क करते हैं, पढ़े लिखे अपनी किस्म के काम कर रहे हैं। किसी ने दौलत को खुदा बना रखा है, किसी ने माशरे को खुदा बना रखा है, किसी ने इन बुतों को खुदा बना रखा है, या बुजुर्गाने दीन को खुदाई के दर्जे पे पहुंचा रखा है। जब तक तबलीग के अंदर ये अनासर शामिल नहीं होंगे, आप पढ़वाने लोगों को नमाजें, वो सब नमाजें बर्बाद हो जाएंगी जब शिर्क होगा। आप कहें उनको सदका खैरात करने को, वो 100 सदके करें, वो 100 रोजे रखें, क्योंकि शिर्क का गुनाह ऐसा है कि जो किसी कीमत पर माफ नहीं हो सकता। इन्नल्लाहा ला यग़फिरु अन युशरक बिही, अल्लाह नहीं बख्शेगा कि उसके साथ शिर्क किया जाए। वो यग़फिरु मा दून ज़ालिक, उसके अलावा कमी कोताही उसको माफ कर देगा।